अगला बाब देखते हैं, सलातुल ईदैन, नमाज ईदैन के मिसाइल। ईदैन दो ईदें, मुराद ईद उल फितर और ईद उल अदहा है। ईद के रोज़ गुसल करना, खुशबू लगाना और मिसवाक करना मुस्तहिब है। मुस्तहिब का मतलब पसंदीदा, हुब से है ये लफ्ज़। दलील क्या है? अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने इस रोज़ यानी जुमे को मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है, लिहाजा जो शख्स जुमे के लिए आए उसे चाहिए कि गुसल करे, अगर खुशबू मुयस्सर हो तो वो भी लगाए और मिसवाक भी करे। तो लिहाजा ईद का दिन यानी जुमे का दिन ईद का है, तो उस दिन खुशबू लगाना, तो ये भी एक किस्म की यानी मुसलमानों की फिर एक छोटी सी ईद हो जाती है। ईद के रोज़ अच्छे कपड़े पहनना मुस्तहिब है। दलील, इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ईद के रोज़ सुर्ख धारियों वाली चादर पहना करते थे। इसे तबरानी ने रिवायत किया, यानी उस दौर का एक रिवायत था, यमन से आती थी ये चादरें, जैसे हमारे यहाँ स्ट्रिप्स वाला कपड़ा मशहूर है, तो उसी किस्म की एक चीज़ थी। तो नया कपड़ा या अच्छा कपड़ा पहना जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि फिर कपड़े पहनने के लिए रोज़े छोड़ दिए जाए। और औरतें अच्छे कपड़े पहने लेकिन मतलब इस तरह के हाल हुलिये में निकले बाहर के जिससे दूसरों की रग़बत आए। यहाँ मैंने ये जान के ये बात कही कि बाज़ दफ़ा हम ये मसला तो बयान करते हैं कि रोज़े यानी ईद के लिए औरतें जाएं, लेकिन आराइश ज़िबाइश और नए कपड़े पहनने के शौक़ में फिर वो पूरी एक किस्म की वहाँ ऐसी फैशन शो कह लें, या वहाँ मतलब बिल्कुल फीलिंग ऐसी आ रही होती है कि बीच में इख्तलात भी हो रहा होता है। तो करें, पहने लेकिन छुपा लें, औरतों में आए तो खोल दें अगर आपको दिल चाह रहा है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन यह है कि अगर आप बाहर रोड्स पे मर्दों में, तो उस वक़्त फिर अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। ईद उल फितर की नमाज के लिए जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खाना सुन्नत है। इसकी दलील, अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ईद उल फितर के दिन खजूरें खाए बगैर ईदगाह की तरफ नहीं जाते थे, और नबी अकरम खजूरें ताक खाते थे। इसे बुखारी ने रिवायत किया। क्यों? इसलिए कि रोज़े से फ़र्क हालत है ना, ईद का दिन खुशी का दिन है। हर दिन हम रोज़े में जब खाना नहीं खाते उस वक़्त, तो जब उस दिन खाएंगे तो खुशी का एहसास होगा। और इसके ऑपोजिट अगली बात क्या है? ईद उल अदहा के रोज़ अपनी कुर्बानी का गोश्त पकाकर खाना और इससे पहले कोई चीज़ ना खाना मुस्तहिब है। दलील, अब्दुल्ला बिन बुरैदा रदियल्लाहु अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम ईद उल फितर के रोज़ खाए बगैर घर से नहीं निकलते थे, और ईद उल अदहा के रोज़ नमाज ईद से पहले कोई चीज़ तनावल ना फरमाते। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया। तो ईद उल अदहा में ऑपोजिट है, उसमें कुछ ना खाएं और कुर्बानी के गोश्त से खाएं, और अगर वो ना मिले तो फिर कुछ और भी खा लें। नमाज ईद बस्ती से बाहर खुले मैदान में पढ़ना सुन्नत है। नमाज ईद के लिए ख़वातीन को भी ईदगाह में जाना चाहिए। दलील, हज़रत उम्मे अतिया रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, दोनों ईदों के दिन हम हैज़ वाली और पर्दा नशीन यानी तमाम औरतों को ईदगाह में लाएं, ताकि वो मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शिरकत करें, अलबत्ता हैज़ वाली औरतें नमाज ना पढ़ें। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। और आज भी हमारे मुल्क में एक अक्सरियत है कि जो औरतों को ईदगाह में नहीं जाने देती नमाज के लिए। आपने कहा कि अगर पीरियड्स वाली खातून है तो भी जाए, बल्कि सहाबिया ने कहा कि अल्लाह के नबी, अगर किसी के पास चादर ना हो, ओढ़नी ना हो, तो फिर क्या करे? क्या कहा? बगैर ओढ़नी क्या जाओ? नहीं, कहा अपनी हमसाई की ओढ़नी में छुप के आ जाओ। इतना पसंदीदा अमल है, और इससे पर्दे की अहमियत भी पता चलती है कि औरत खुल के कैसे आएगी। नमाज ईद के लिए पैदल चलकर पैदल जाना और वापस आना सुन्नत है। दलील, अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह पैदल जाते और पैदल ही वापस तशरीफ लाते। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। अब आज गाड़ियों में जा रहे हैं तो क्या हुक्म है? दूर से आ रहे हैं तो गाड़ी में जा रहे हैं, थोड़ी सी दूर खड़ी कर दें, थोड़ा सा पैदल चल रहे हैं, और इसमें रास्ता बदल के जाने की भी सुन्नत मिलती है। आप जाएं तो एक रास्ते से जाएं और निकलें तो दूसरे से निकलें। ईदगाह जाते वक्त बकसरत तकबीरें कहना सुन्नत है। ईद उल फितर में इमाम के खुतबे के लिए मिंबर पर बैठने तक तकबीरें कहते रहना चाहिए। दलील, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो ईद के दिन सुबह सुबह सूरज निकलते ही ईदगाह में तशरीफ़ ले जाते और ईदगाह तक तकबीरें कहते जाते। फिर ईदगाह में भी तकबीरें पढ़ते रहते, यहाँ तक कि जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाता तो फिर तकबीरें पढ़ना छोड़ देते। इसी तरह इसके बाद ये इमाम शाफी ने ये रिवायत की है। इसके बाद अगली रिवायत इसी से मुतल्लिक, ईद उल अज़हा के मौके पर तशरीक के तमाम दिनों में कसरत से तकबीरें कहनी चाहिए। दलील, इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हो तशरीक के तमाम दिनों में नमाजों के बाद अपने बिस्तर पर, अपने खेमे में, अपनी मजलिस में और चलते फिरते तकबीरें कहा करते थे। इसे बुखारी ने रिवायत किया। मसनून तकबीर के अल्फाज ये हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो अयाम तशरीक 11, 12, 13 जिलहज में ये तकबीर पढ़ा करते थे। आप भी पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब एक दफा सुनते भी हैं इन तकबीरों को, और साथ साथ आप पढ़ना चाहें तो याद करने की नियत से पढ़ सकते हैं।
La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
अल्लाह ताला की बड़ाई के कलिमात में भी कितनी खूबसूरती है ना, कि आप पढ़ते हैं सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। ईदैन की नमाज ताखीर से पढ़ना नापसंदीदा है। ईद उल फितर की नमाज का वक्त इशराक की नमाज का वक्त है। दलील, अब्दुल्ला बिन बुसर रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि वो खुद ईद उल फितर या ईद उल अदहा की नमाजों के लिए लोगों के साथ ईदगाह रवाना होते तो इमाम के देर करने पर नापसंदीदगी का इजहार किया और फरमाया, हम लोग तो इस वक्त नमाज पढ़कर फारिग भी हो जाया करते थे और वो इशराक का वक्त था। इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया। तो हमारे लिए भी ये अमल है कि कोशिश करनी चाहिए कि जिस जगह जल्दी नमाज होगी वहां जाए। मैंने इसका ऑपोजिट देखा है, जो लोग देर से सोने के आदी होते हैं वो ये भी नहीं देखते कि मसनून तरीके से या सुन्नत तरीके से वहां नमाज भी होगी कि नहीं होगी, और वो क्या करते हैं कि देर वाली जगह में जाते हैं। तो कोशिश की जाए कि पहली और शुरू की नमाज में जाया जाए। बाज दफा आप जरूरत के तहत एक से दो दफा, तीन दफा भी नमाजें होती हैं तो शुरू के वक्त में जाना ज्यादा पसंदीदा होगा। ईद उल अदहा की नमाज जल्द और ईद उल फितर की नमाज निस्बतन देर से पढ़ना मसनून है। दलील, अबुल हुवैरस रदी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने नजरान के गवर्नर अमर बिन हजम को तहरीरी तौर पर यह हिदायत फरमाई, ईद उल अदहा की नमाज जल्दी पढ़ो और ईद उल फितर की नमाज ताखीर से पढ़ो और लोगों को खुतबे में नेकी की नसीहत करो। इसे शाफई ने रिवायत किया। क्यों? इसलिए कि ईद उल अदहा के बाद कुर्बानी करनी होती है ना, तो वो जल्दी की जाए ताकि फिर कुर्बानी की जाए, और ईद उल फितर में ऐसी कोई बात नहीं होती। खुले मैदान में नमाज पढ़ने के लिए सुतरे का अहतमाम करना चाहिए। सुतरा क्या चीज़ है? नमाज पढ़ने के वक्त सामने कोई चीज़ रख लेना ताकि कोई अगर आगे से गुजरे तो फिर उसके लिए मतलब रुकावट वो चीज़ बन जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद की नमाज या कोई दूसरी नमाज खुले मैदान में अदा फरमाते तो आपके सामने भाला गाड़ दिया जाता, यानी जैसे स्टिक कह लें, और आप इसके पीछे नमाज अदा फरमाते और सहाबे कराम आपके पीछे होते। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। खुले मैदान में भी यानी ऐसे नहीं पढ़ सकते कि आगे से कोई भी गुजर जाए। ईद उल फितर और ईद उल अदहा की नमाज दो रकत है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं, नबी अकरम के फरमान के मुताबिक नमाज ईद उल अदहा की नमाज दो रकत है, ईद उल फितर की नमाज दो रकत है, मुसाफिर की नमाज दो रकत है, जुमे की दो रकत, और ये मुकम्मल नमाज है, कम नहीं। इसे निसाई ने रिवायत किया, यानी सिर्फ दो रकत है। अब कोई इससे कम या ज्यादा पढ़े तो वो उसने इजाजत है उसको पढ़ने की, क्या हर्ज है, भाई दो ही है ना, ज्यादा ही कर रहे हैं ना। नहीं, आगे आप पढ़ेंगे کہ نماز سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی نفل نہیں پڑھنے. تب دیکھیے جس طرح اس میں ہم نماز میں آگے پیچھے کمی بیشی نہیں کر سکتے, تو کیا پھر ہم باقی عبادات میں کر سکتے ہیں؟ دو کی جگہ ہم چار پڑھ لیں, کیا بھائی نفل ہی ہے نا, کیا حرج ہے؟ تو جب دین کے کسی معاملے میں لوگ کسی بات سے روکے جائیں اور یہ کہیں کہ کیا حرج ہے, تو اس کی وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حرج یہ ہے کہ اللہ یا اس کے رسول کا یہ حکم نہیں ہے, اور یہ بہت بڑا حرج ہے. حرج کمی کو کہتے ہیں. پھر اگلی چیز, نماز عید کے لیے اذان ہے نہ اقامت, یعنی نہ اذان ہے اور نہ اقامت. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے ساتھ ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا. عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے. دلیل, عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز عیدین خطبے سے پہلے ادا فرماتے. اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ہم سب کے لیے کرائیٹیرین مل گیا, کہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کہاں نہیں پڑھ سکتے, ہم طریقے کو دیکھ لیں. ایک دفعہ پوری زندگی میں مجھے اتفاق ہوا تھا کہ ہم ایسی مسجد میں یا ایسی جگہ گئے, کہیں بھی سفر میں تھے یا کہاں بھی, کہ پہلے انہوں نے ہمیں خطبہ سنایا اور بعد میں نماز ہوئی. تو ذہن میں رکھیے کہ جمعے کی نماز سے عید کی نماز کا یہ فرق ہے. جمعے میں خطبہ پہلے اور نماز بعد میں, اور عید کی نماز میں نماز پہلے اور خطبہ بعد میں, لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے. عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں. پہلی رکعت میں قرت سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرت سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے. دلیل, عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں قرت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں. تو یہ کون سی نماز ہوئی جس میں 12 ہوں گی؟ دونوں نمازوں میں یعنی 12 دفعہ کیا جائے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا مسئلہ کیا ہے کہ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے. حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے. اس سے احمد نے روایت کیا. اس مسئلے میں بھی کافی اختلاف ہے. اس میں یعنی ایون اس دور حاضر کے مسائل میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس پہ سٹل کچھ علماء یعنی صحیح سوچ رکھنے والے بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے جائیں, کچھ کہتے نہیں دیے اٹھائے جائیں, اور دونوں کے پاس ان کے دلائل ہیں. ٹھیک ہے, تو نماز پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کے پہلے اللہ اکبر بار بار امام کہتے ہیں, ہم بھی پیچھے کہیں گے, اور اس کے بعد پھر سور فاتحہ اور پھر کوئی بھی سورت پڑھ کے. اور وہ کون سی صورتیں تھیں وہ آگے آپ کے آ رہا ہے کہ نماز عیدین کی دو رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورت العلیٰ اور دوسری رکعت میں سورت الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے. دلیل, نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سبح اسم ربک العلیٰ پہلی رکعت میں اور هل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا. نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل یا سنت نماز نہیں. دلیل, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے اور 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی, اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا. یہاں بھی دیکھیے کہ آپ عقل سے پوچھیں تو پڑھ لیں, گئے ہوئے ہیں گھر سے نکلیں, کیونکہ عموماً مسجد میں جب ہم جاتے ہیں تو تحیت المسجد پڑھتے ہیں نا 2 نفل, لیکن عید کی نماز پہلی بات ہے کہ کھلے میدانوں میں ہونی چاہیے, مسجدوں میں بہت مجبوری کی حالت میں ہونا چاہیے. اور یہ جو کمیونٹی میں ڈفرینٹ مسجدوں میں ہوتی ہے, اس سے وہ اسلام کی روح نہیں آتی. اصل روح کیا ہے؟ اس ایک موقع پہ اس علاقے یا شہر میں رہنے والے تمام مسلمان ایک دوسرے کو مل لیں. اگر پھر سٹل چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ہم کریں گے تو وہ چیز وہاں نہیں آتی. تو اس کے لیے پسندیدہ موقع کیا, اور اگر آپ کے پاس چوائسیز ہوں کہ مسجدوں میں بھی ہو رہے ہیں لیکن لوکل جو بھی مسلم کمیونٹیز کو ریپریزنٹ کرتی ہیں کوئی آرگنائزیشن, تو وہ کسی کھلی جگہ پہ کرتی ہیں, تو آپ کو وہاں جانا چاہیے. اور عید کا تعلق بہت زیادہ یونٹی اور مسلمانوں کے اتحاد سے بھی ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہاں کتنا وقت ہوتا ہے لیکن ہم نہیں پڑھ سکتے, یا پھر وہی بات کہیں گے کہ کیا حرج ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو دیکھا تھا عیدگاہ میں نماز پڑھ پہلے نفل پڑھتے ہوئے, تو آپ نے اس کو روکا اور بہت سخت لفظوں میں روکا कि अल्लाह के नबी नहीं पढ़ते थे तो तुम कैसे पढ़ सकते हो। नमाज ईद के बाद तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनका के अल्फाज से एक दूसरे के आमाले सालेह की कबूलियत की दुआ मांगना दुरुस्त है। दलील हज़रत जुबैर बिन नज़ीर रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि सहाबा किराम ईद के रोज़ जब आपस में मिलते तो एक दूसरे को तकब्बल अल्लाह पढ़ेंगे अभी तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनका कि अल्लाह कबूल करे हमसे और तुझसे कहते। इसे इब्ने हजर ने फतहुल बारी में नकल किया। इब्ने हजर क्या कौन थे? इब्ने हजर अल अस्कलानी, और इन्होंने बुखारी की शरह लिखी है जिसको फतहुल बारी कहते हैं। सबसे मारूफ शरह यह शरह का मेनजे की उसकी एक्सप्लेनेशन मजीद उनकी हदीसों को वाजे किया गया। ईद का जाने और आने का रास्ता बदलना सुन्नत है। दलील जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं नबी अक्रम ईद के रोज़ नमाज ईद में आने जाने का रास्ता तब्दील फरमाया करते थे। इसे बुखारी ने रिवायत किया। हिकमत क्या है? ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो, और जो ईद के दिन का एक रिचुअल है कि उसमें लोग दूसरे लोगों से कसरत से मिले वो पूरा हो। अगर जुमे के रोज़ ईद आ जाए तो दोनों पढ़ने बेहतर हैं, लेकिन नमाज ईद पढ़ने के बाद अगर जुमे की बजाय सिर्फ नमाज जोहर अदा की जाए तो भी दुरुस्त है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह से रिवायत किया कि नबी अकरम ने फरमाया तुम्हारे आज के दिन में दो ईदें, एक ईद और दूसरा जुमा इकट्ठी हो गई हैं। जो चाहे उसके लिए जुमे के बदले ईद ही काफ़ी है, लेकिन हम दोनों यानी जुमा और ईद अदा करेंगे। इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया। यानी ये वाहिद मौका है कि जिसमें किसी मर्द पे जुमे की नमाज साकित होती है। इसको नोट कर लें, वाहिद मौका है कि जिस दिन कोई मर्द अगर जुमे की नमाज पढ़ने नहीं जाता तो इजाज़त है, अदरवाइज इसके बगैर तसव्वुर भी नहीं कि कोई मुसलमान मर्द हो और जुमे के खुतबे से पहले मस्जिद में ना पहुंच जाए। अब्र की वजह से शवाल का चांद दिखाई ना दे और रोज़ा रख लेने के बाद मालूम हो जाए कि चांद नजर आ चुका है तो रोज़ा खोल देना चाहिए। अगर चांद की इत्तला जवाल से कबल मिल जाए तो नमाज ईद उसी रोज़ अदा कर लेनी चाहिए। यानी 8, 9, 10 बजे के करीब भी अगर मिल जाती है तो फिर नमाज पढ़ी जाएगी, और अगर इसके बाद मिले तो नमाज ईद दूसरे रोज़ अदा की जाएगी। दलील क्या है? अबू उमैर बिन अनस रजी अल्लाह अन्हमा अपने चचाओं से जो सहाबे नबी में से थे रिवायत करते हैं कि बाज़ सवार नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुए और गवाही दी कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ का चांद देखा। रसूल अकरम ने सहाबे कराम को हुक्म दिया कि वो रोज़ा तोड़ दें और फरमाया कल सुबह नमाज ईद के लिए ईदगाह आएंगे। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। यानी ईद उसी दिन कर लेंगे, खाना पीना जो भी है, लेकिन फिर नमाज अगले दिन पढ़ेंगे। अगर किसी को ईद की नमाज ना मिल सके या बीमारी की वजह से ईदगाह ना जा सके तो इसे 2 रकत तनहा अदा कर लेनी चाहिए, लेकिन ये कब है? जब ना कर सके। ये नहीं कि हर एक कह के हम घर में ही 2 रकत पढ़ते हैं, गांव में भी नमाज ईद पढ़नी चाहिए। हज़रत अनस बिन मालिक ने अपने ग़ुलाम इब्ने अबी उतबा को जाविया गांव में नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया तो इब्ने अबी अतबा ने हज़रत अनस के घर वालों और बेटों को जमा किया और सब ने शहर वालों की तकबीर की तरह तकबीर और नमाज की तरह नमाज पढ़ी, और इकरमा ने कहा गांव के लोग ईद के रोज़ जमा हों और 2 रकत नमाज पढ़ें जिस तरह इमाम पढ़ता है। और अता रहमहुल्लाह ने कहा जब किसी की नमाज फौत हो जाए तो वो 2 रकत नमाज अदा कर ले। इसे बुखारी ने रिवायत किया। ईद के रोज़ रोज़ा रखना मना है, वजाहत है। तब यहाँ है वो बात कि अगर कोई ना जा सके औरत तो घर में पढ़े, इसी पे क्यास करे। अगर यानी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि मस्जिद ही में जाए यानी ईदगाह में जाए। कोई मजबूरी है, कोई नहीं लेके जाता तो फिर पढ़ ले दो, लेकिन तकलीफ़ महसूस करते हुए और इस चीज़ का दिल में एहसास पैदा करते हुए कि मैंने दीन इस्लाम के एक अहम रिचुअल को अदा नहीं किया।